الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا کو ایکسپلوئٹ کرنے کے علاوہ ان کا ایک اور پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ میں نے بتا دیا تھا۔ گریٹر اسرائیل ہی کے پلان کے اندر ان کا ایک اور پلان ہے تھرڈ ٹیمپل بنانے کا، اپنی جو مسجد ہے ان کی ٹیمپل ہے اس کے تھرڈ اور فائنل تعمیر کرنا، اور اس سب کے نتیجے میں ان کو جنگوں کی ضرورت ہے۔ جنگ ہوگی تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، بغیر جنگ کے تو نہیں نقشہ بدلا جاتا، تو جنگوں کی ضرورت ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیشن گوئیاں دی ہیں اس بارے میں، اور پھر اس کے بعد یہ بات کی تھی کہ یہ سب کچھ ان کے پاس اچیویبل آلموسٹ یہ ہے، سب کچھ ان کی اپروچ میں ہی سب کچھ ہے۔ ان کے پاس ملٹری مائٹ بھی ایسی ہے جس کا مقابلہ ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے، ٹیکنالوجی جو ان کے پاس ہے اس کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس سارے فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہیں چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کر نہیں رہے۔ جب تک وہ تھریٹ جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کو وہ ایلیمینیٹ نہیں کرتے تھے، تب تک وہ نیکسٹ اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ تھریٹ کیا تھا؟ ایران اور پاکستان ہے۔ ایران نے تو ابھی ریسنٹلی گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور سرنڈر کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نیوکلیئر پروگرام تھا ہم اس کو ریورس کر لیں گے، آپ ہمارے اوپر سے سینکشنز اٹھا لیں، آپ کے لوگ آ کے مانیٹرنگ کریں، اور یہ بے شک تسلی کے ساتھ میک شور کر لیں کہ ہم لوگ ملٹری پاور کی یورینیم کو انریچ نہیں کر رہے۔ اب پیچھے ایک کنٹری رہ گیا ہے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کے بارے میں نے آپ کو شروع سے لے کے قائد اعظم کے ٹائم سے لے کے بتایا تھا کہ کیا کیا ان کے پلانس رہے ہیں، کہ پاکستان کے پاس یہ جو اٹامک ایسٹ ہے جب تک یہ موجود ہے تب تک ہمارے لیے تھریٹ رہے گا، اور یہ بتایا تھا کہ کس طرح وہ مسلسل 9/11 کے بعد سے لے کے یہ اسٹیٹمنٹ دیتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ سیف نہیں ہے، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ سیف نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو جو آپ کو پچھلے 10 سالوں میں 12 سالوں میں نظر آیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے کسی طرح سے۔ یہ ٹارگیٹ بہت پہلے اچیو ہو جاتا اگر پاکستان طالبان کا ساتھ دیتا تو وہ پاکستان پہ اٹیک کر پاتے۔ پاکستان نے کیونکہ منافقت دکھائی تھی اس لیے اب انہوں نے کہیں اور پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کرنی ہے، ابھی تک پھنس نہیں پا رہا، لیکن ان کا پلان بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ پلان کیا ہے ان کا؟ پاکستان کے اندر انارکی، کیاس، سول وار آ جائے۔ ہم بہت قریب ہیں اس کے، ہمارے صوبے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ یہ کبھی آج تک ہسٹری آف پاکستان میں اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ ایک چوک کے اوپر کھڑے ہوئے ٹریفک پولیس والے کو گولی مار دی جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہاں پہلے ہوتا تھا، 90s کے اندر یہ ہوتا آتا تھا کہ شیعہ سنی کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، یہ نہیں کہ جو مرضی شیعہ یا جو مرضی سنی نظر آ رہا ہے مار دو، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی کہ وہ فلانے مسئلے کے فلانے جو عالم ہے نا جس نے ہمارے مسئلے کے خلاف یہ بات کی ہے اس کو کل کرنا ہے، اس ٹائپ کے واقعات ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ویسے ہی مارے جا رہے ہیں۔ پھر چند مہینے پہلے وہ بہت بڑی ایک بات ہوئی تھی، بہت بڑی بات ہوئی تھی، وہ کیا تھا؟ زیارت میں قائد اعظم کی جو ریزیڈنس تھی اس کو اڑا دیا گیا۔ یہ جو واقعات ہیں یہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو گورنمنٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو تکلیف ہے پاکستان سے، ایز اے ملک تکلیف ہے ان کو، اس سے نہیں کہ تکلیف کے زداری کیا کر رہا ہے یا آرمی چیف نے کیا کیا یا نواز شریف کیا کر رہا ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی، حالانکہ زیارت کی ایک قائد اعظم کی ریزیڈنس نہ تو کوئی دیکھنے جاتا تھا نہ کچھ، اس کے مارنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ مارنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ ایک سمبل ہے، اصل میں بہت بڑا سمبل ہے یہ کہ اس حد تک ہمارے پلانس چلے گئے ہیں۔ ایک میں نے خواب دیکھا تھا، خواب ایک نارمل سا خواب تھا، اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن خواب کے دوران ایک دم سے کوئی ایسی بات آتی ہے، ایک خبر آئی ہے کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ قائد اعظم کی ڈیتھ کے اوپر ایک دم سے بہت زیادہ ایک غم کا سما ہے، لیکن کوئی اور سیڈ ہے ہی نہیں، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت سیڈ ہوں بلکہ رو رہا ہوں میں خواب کے اندر کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سو کے اٹھا ہوں، جب واپس سینسس میں آیا تو میں نے دھیان کیا کہ ان کی تو ڈیتھ کب کی ہوئی ہوئی ہے، تو کیا عجیب سا میں نے خواب دیکھا، بے تکا سا خواب، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اگلے دن یہ والی خبر آ گئی کہ زیارت کی جو ریزیڈنسی ہے اس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، تو پھر سمجھ لگی کہ نہیں، بے تکا خواب نہیں تھا، اس خواب کی کوئی سینس بنتی ہے۔ جھوٹا اگر خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا۔ फिर उसके बाद ये जो शिया सुन्नी के आजकल मसले चल रहे हैं और काफ़ी सवेर किस्म के मसले चल रहे हैं, खबर तो नहीं आने दी कि खबर है क्या, लेकिन ये हर एक को पता है कि 7-8 बंदे या 10 बंदे या 20 बंदे भी मरने से कर्फ्यू तो नहीं लगता। मुझे तो अपनी पूरी लाइफ में याद नहीं है कर्फ्यू ना लगाओ। हाँ, पहले कर्फ्यू लगा हुआ था भुट्टो के दौर के अंदर, वो तो 40 साल पहले की बात है, कर्फ्यू तो नहीं लगता। तो ये सब कुछ है, राइट ट्रैक पर चला रहे हैं, पाकिस्तान को कोलैप्स करना है, पाकिस्तान सेल्फ कोलैप्स की तरफ जाए। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर अनार्की फैलेगी तो इनको मौका चाहिए कि ये इन्वेड करके पाकिस्तान के अंदर आएँ और न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं पाकिस्तान के, इनको न्यूट्रलाइज कर दें। आगे ना अमेरिका को इंटरेस्ट है, ना इसराइल को इंटरेस्ट है, आगे वो पाकिस्तान जाने जो बचेगा पाकिस्तान का, और इंडिया जाने, बस इंडिया खुद ही कंट्रोल कर लेगा पाकिस्तान को। तो ये बात एक रीसेंट मूवी के अंदर भी उन्होंने दिखा दी है। जी एग्जैक्टली, ये जो मूवी एक हॉलीवुड की आई है जिसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली ये दिखाया है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है और उनकी जो एलीट फोर्स है वो एक नाइट ऑपरेशन करती है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको क्लेम करके ले जाते हैं, जिस तरह उसामा टाइप ऑपरेशन हुआ था। और वो जाहिर बात है आज से अगर हम लोग 5 साल पहले या चले आज से हम 3 साल पहले भी ये बात सुनते तो सारे हंसते हैं कि कितनी भोंगी मारी है उन्होंने, कितनी बड़ी बात छोड़ दी है कि इस तरह ऑपरेशन करके चले भी जाएं और पाकिस्तान को डिफेंड भी नहीं कर सका अपने आप को। लेकिन 2 मई 2011 उसामा बिन लादेन वाले जो वाक़या, अब वो उसामा बिन लादेन था नहीं था, उन्होंने झूठ बोला, वाकई मारा, एकदम से बॉडी को फेंक दिया, वो जो कुछ भी था, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एबटाबाद आए, ऑपरेशन किया और चले गए। 38 मिनट्स वो ऑपरेशन करते रहे हैं, हमारे पास PMA मौजूद है और आर्मी को पता भी नहीं लग सका कि ये हुआ क्या है। 2 में से 1 सूरत ही हो सकती है, या तो बिल्कुल झूठ बोल रही है हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस, 100% झूठ बोल रही है और ये सब मिले हुए थे, या दूसरी बात ये हो सकती है कि वाकई इतने नाहेल है, ये वाकई इतने नाहेल हैं कि हेलीकॉप्टर आए। आर्मी चीफ स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो रडार में नहीं पिक हो सकते, ये टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अकलमंदो, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, आर्मी की एविएशन का, एयरफोर्स का क्या काम होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करवाना होता उन्होंने कि ये क्या चीज़ उड़ती हुई आ रही है। कहीं बॉर्डर पे अगर कहीं जंगलों में हेलीकॉप्टर उतरा होता तो बात मानी जा सकती थी कि पता नहीं कहीं उन्होंने किया होगा ऑपरेशन। एबटाबाद में आए, इतना हार्ट ऑफ पाकिस्तान दरमियान में आके ऑपरेशन किया, PMA मौजूद है उधर और पता तक नहीं लग सका। तो ट्रैक पर बिल्कुल चल रहा है सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान जाए ताकि, और अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग पॉजिटिव माइंडेड हैं तो खबरें ऐसी सुनने को मिले रोज़ाना कि अनारकी है, महंगाई इतनी हो गई है, कत्ल गारत हो रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फलाना मसला है, कराची के अपने मसले हैं, हर शहर के अपने मसले हैं, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, पाकिस्तान छोड़ के निकलो यहाँ से, बस इसका कोई हल नहीं है इसके अलावा। तो बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक जा रहे हैं, पाकिस्तान रास्ते में है अपने सेल्फ कोलैप्स के ऊपर। इमेजिन कर लेते हैं खुदा ना खास्ता ऐसा होता है जो वो चाह रहे हैं, और ये मैंने किसी और क्लास में बताया था कि उनकी जो थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं या उनके जो प्लान्स हैं उनके मुताबिक 2020 के अंदर पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका होगा उनके प्लान के मुताबिक। अगेन पुरानी बात होती तो हम कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, अब के हालात देखें हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है ऐसा। तो अगर पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज बिलफर्ज उन्होंने खुदा ना खासाला ना करे कर दिया उन्होंने, तो फिर तो आगे से राह हमवार है, और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका तो कोई हाल है ही नहीं, पॉलिटिकली हमारा भी कोई हाल नहीं है, बस सिर्फ कह रहा हूँ कि मौजाती तौर पे मैं हमारे पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब अवेलेबल है, अदरवाइज़ पॉलिटिकली और आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कोई हाल नहीं है। और जिससे उम्मीद की जा सकती है करंट एलीट तमाम मुल्कों की, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तमाम मुल्कों की एलीट का कोई हाल नहीं है। उम्मीद किससे की जा सकती है, हो सकता है जो कमिंग जनरेशन हो उसके अंदर कोई इनकलाब आएगा, उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, तो उसको भी आराम से उन्होंने इस ट्रैक पे लगाया हुआ है कि मुल्क छोड़ के जाओ, करियर बनाओ बस। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बताई थी कि क़यामत के नज़दीक नफसा नफसी का आलम होगा कि हर बंदा सिर्फ अपनी ही फिक्र किया करेगा, उसको और किसी चीज़ की गर्ज नहीं होगी। तो ये उनके प्लान्स हैं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लम की एक हदीस है सही मुस्लिम की किताबुल ईमान के अंदर, कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदल इस्लाम गरीबन, इस्लाम की इब्तिदा जब हुई थी तो इस्लाम एक बहुत अजनबी चीज़ था, इस्लाम के दायरे में लोग नहीं आ रहे थे, मक्का का दौर इमेजिन करें, आप सल्लम खुद दावत तबलीग कर रहे हैं, यानी कि हमारे कोई पूरी उम्मत के लोग भी जमा हो जाएं तो आप सल्लम का तो नहीं कंपैरिजन किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लम खुद दावत तबलीग कर रहे हैं और कोई मान ही नहीं रहा, ईमान ही नहीं ला रहे लोग आप सल्लम के ऊपर। मुश्किल से 80 या 100 लोग, वो भी अगर थे तो मेजॉरिटी कौन लेते, गुलाम लोग थे। 13 साल लग गए हैं और लोग इस्लाम कबूल कर ही नहीं रहे। तो आप सल्लम फरमाए इस्लाम की इब्तदा हुई थी कि वो करीब था, अजनबी था, उसको लोग अडॉप्ट नहीं करते थे। वसयऊदो कमा बदा गरीबन, फिर अब अन करीब इस्लाम दोबारा उसी तरह हो जाएगा जिस तरह के वो इब्तदा में था, अजनबी, और लोग उसको छोड़ना शुरू हो जाएंगे। पेशन गोई पे पेशन गोई, इसका मतलब है पहले इस्लाम ने अब फैलना है। तो ये वही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लम के बाद मदीना के अंदर क्या हुआ, पूरा मदीना शहर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लम के अपने हयात तक जो अरब था उस तक ही इस्लाम आ गया। अब देखिए दुनिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, या को मैं रेशो बता चुका हूँ, लेकिन आप ने आगे क्या फरमा दिया, फिर दोबारा ये अजनबी होना शुरू हो जाएगा कि लोग दुनिया की खातिर इसको छोड़ना शुरू हो जाएंगे, तर्क करना शुरू हो जाएंगे। बस यऊद कमा बदा गरीबन, तो उसी तरह ये दोबारा गरीब हो जाएगा, अजनबी हो जाएगा जिस तरह के वो था। फतूबा लिल गुरबा, हाँ अगर जो उस दौर में भी इस्लाम को छोड़ेगा नहीं उसके लिए खुशखबरी है। तो जो नौजवान नस्ल जिससे तवक्को भी है वो भी सिर्फ दुनियादारी उन चीज़ों में ही पड़े हुए हैं, और प्लान जो हैं यही जुइश प्लान ये बिल्कुल पूरे हो रहे हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत 32 के अंदर फरमाया हुआ है, युरीदून अन युतफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम। ये यहूदी जो हैं ये चाह रहे हैं, इनकी प्लान्स हैं कि अल्लाह के नूर को यानी कि इस्लाम को, दीन हक को अपने मुंह की फूकों से बुझा दें, जिसने दिया होता है उसको बुझाया जाता है। इसके अंदर क्या बात की गई है कि मुंह की फूकों का क्यों जिक्र किया गया, वो आपको मैंने पूरी तारीख इतने अरसे से बताता आ रहा हूँ कि कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन्होंने नहीं की। सब कुछ क्या कर रहे हैं, प्लान्स हैं इनके, सिर्फ एजेंडाज हैं, किसी तरह से ये हो जाए, किसी तरह से ये हो जाए, ये हो जाए, और एजेंडाज के ज़रिए ही ट्रैप फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। इसी तरह की आयत जो है सूरह सफ़ के अंदर अल्लाह ताला ने दोबारा रिपीट की है, युरीदूना लियुतफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम। ये साजिशें कर रहे हैं, चाह ये रहे हैं कि अल्लाह का जो नूर है, अल्लाह की हदायत, अल्लाह का जो दीन है या जो हक है वो भुज जाए। एक और हदीस है सही मुस्लिम की किताबुल फितन के अंदर, तवील हदीस का हिस्सा है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तवील हदीस का हिस्सा है जिसके बीच वाला हिस्सा मैं बता रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो बिल आखिर फिर जब ये हालात ऐसे पैदा होंगे तो तीन हिस्सों में बढ़ चुकी होगी, कहने को मुसलमान होंगे लेकिन तीन हिस्सों में बढ़ चुके होंगे। एक हिस्सा वो होगा जो फरार हासिल करेगा, भागेगा बस, ये वो हिस्सा है जिसकी तौबा फिर अल्लाह ताला कभी दोबारा कबूल नहीं करेंगे। एक हिस्सा वो है जो इस फितने, इस मसाइल में, इन जंगों में या इन हालात में मारा जाएगा, कत्ल हो जाएगा, और ये बेहतरीन इनमें से जिन लोगों ने अल्लाह की राह में लड़े थे वो बेहतरीन शहदा कंसिडर किए जाएंगे। एक तीसरा ग्रोह आखिर में छोटा सा वो रह जाएगा जो बिल आखिर जो है वो कायम रहेगा इस्लाम के ऊपर, कि यहाँ तक के फिर फितरे जो हैं वो ख़त्म होने की तरफ आएंगे, बज़ाहिर सब मुसलमान होंगे। हमारी फिक्र करने की बात ये है कि हम किस ग्रुप में फॉल करेंगे, जो हालात हैं या जो हमारे प्लान्स हैं उनके मुताबिक, तो और इस हदीस के अगर मिरर में देखा जाए तो हम तो फिर उसमें फॉल करते हैं जो इस्लाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू होंगे, दुनिया का कोई फ़ायदा हमारे हाथ से ना निकले। और ये जो फितने जितने भी हैं ये, या जितनी भी मैंने आप लोगों को इससे पहले बातें बताई थी, अनफॉर्चुनेटली आपको ये बातें उलमा के यहाँ सुनने को नहीं मिलेंगी, आपको मस्जिदों में बातें सुनने के नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मसला ये है, नंबर वन के इस फितने की समझ कम है, बहुत कम समझ है। सारी बहस किस चीज़ के ऊपर हो रही होती है, आप में से भी जितने भी गर्ल्स या बॉयज़ अगर इस्लाम की तरफ आना भी शुरू होते हैं तो पैटी इश्यूज़ के अंदर आप लोग फंसना शुरू हो जाते हैं, वो उन पैटी इश्यूज़ में फंस के और एक साइड लाइन पे हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम में लगते ही नहीं है वो। तो इकबाल ने एक शेर कहा हुआ है, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। जो अंग्रेज़ों ने इजाज़त दे रखी है हमें और हमें वेस्ट ने हमारे ऊपर, ये जैसे मैंने बताया सेकुलरिज्म का असूल है, हमें नमाज से कभी नहीं रोका जाएगा, हमें रोज़े से कभी नहीं रोका जाएगा, हज करने पे कभी कोई पाबंदी नहीं आएगी, कभी बैन नहीं लगेगा हज के ऊपर, करते रहें जाके हज। तो ये इकबाल ने कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। अब आखिरी चीज़ जो है इन तमाम चीज़ों का जो क्लाइमेक्स है या जो टॉप है वो ये है कि यहूदी, इनके यहाँ एक पेशन गोई चली आ रही थी कि हमारा एक मसीहा आना है, हमारा एक सेवियर आएगा, हमें एक बचाने वाला आएगा जो हमें जिल्लत और रसवाई से निकाल के दुनिया की बादशाहत के ऊपर ले आएगा, हमें हमें वो इज्जत और मकाम देगा। अल्लाह का ये वादा था उनसे, उनकी किताबों में ये वादा लिखा हुआ था और अल्लाह ने ये वादा पूरा भी कर दिया। वो मसीह जिसका जिक्र था वो अल्लाह ताला ने भेज दिए, मसीह इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम, ये वो थे जिनका वादा किया था अल्लाह ताला ने, वो आए। और वो जब उनके लेक्चर चल रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक, तब मैंने बताया था कि यहूदियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कह दिया भाई ये हम लोगों ने जो इतने अपना बाजार गर्म किया हुआ है, हमारी जो इतनी बात चलती है, हमारे फतवे माने जाते हैं लोग, आज हमसे ये करते हैं, इन्होंने तो आके हमारे सारे भेद खोलना शुरू कर दिए हैं कि तुम लोगों ने ये गुनाह तुम के, ये गुनाह तुम लोगों के, ये गुनाह तुम उलमा ये करते हो। उलमा को निशाना बनाया था कि तुम ज़ाहरी तो बहुत ज़्यादा अपना तकवा जाहिर करते हो और लिबास तुम्हारा ऐसा है, और अंदर का हाल ये है कि तुम्हारे अंदर तारीकी तारीकी है, तुम्हारी मिसाल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कब्रों के ऊपर तो सजाया जाता है लेकिन अंदर सवाए अंधेरे की और बदबूदार सूखी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। उन्होंने प्लान बना के ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से रद्द कर दिया, सूली चढ़ा दिया अपनी तरफ से। और अल्लाह ताला ने वो जो आयात थी वो मैंने बता दिया, अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली कह दिया था माँ कतलू हो व माँ सलबू हो, ना तो इन्होंने इनको सूली चढ़ाया और ना ही उनको कत्ल किया था, कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ये बात कह रहे थे। बहरहाल ये तो अपनी तरफ से अभी तक ये समझ के बैठे हुए हैं कि वो आ रहा है, वो आने वाला है सेवियर हमारा। और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो हालात हम पैदा कर रहे हैं अब हमारा सेवियर आने वाला है। बाइबल के अंदर भी जिक्र है, क्रिश्चियंस भी इंतज़ार कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, सिर्फ मुसलमान कायल नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग होगी, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी कहते हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस को, वो भी मानते हैं और वो भी मानते हैं कि एक दज्जाल ने आना है जिसको वो अपने हिसाब से कहते हैं एंटी क्राइस्ट बोलते हैं उसे वो। इसके ऊपर उन्होंने मूवीज़ भी बनाई हुई हैं, द ओमन नाम की 3 सीरीज़ आई थी लेट 70s और 80s के अंदर, फिर 2006 के अंदर उसकी रीमेक हुई थी। 2006 जून को वेटिकन चर्च ने बीबीसी की खबर आई थी ताकि 6 जून 2006 उनके नज़दीक ये एंटी क्राइस्ट या दज्जाल का सिंबल है। उस दिन एंटी क्राइस्ट ने पैदा होना है, तो जितने भी कैथोलिक बिलीविंग क्रिश्चियंस हैं वो, और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, औरतें वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनकी डिलीवरी डेट 6 जून 2006 बनता है, वो या तो अपने डिलीवरीज पहले करवा लें या किसी तरह से इंजेक्शंस के थ्रू डिले करवा लें, उस दिन डिलीवरी ना हो, ये ना हो कि एंटी क्राइस्ट आपके यहाँ पैदा होने वाला हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये आजकल की ही बातें हैं, ये ऐसी नहीं कि दूर दराज की कोई बातें हो रही हैं। और बहुत अरसे से एक ख़ास किस्म की मूवीज़ आए जा रही हैं, मूवीज़ के अंदर सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। दुनिया के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ईविल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ये पुलिस आर्मी ये प्रेजिडेंट के बस की बात नहीं है। तो हीरोज़ की कॉन्सेप्ट हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क, बैटमैन, और आप देखिए मूवीज़ में मूवीज़ आ रही हैं, साल एक साल के अंदर 3-3 मूवीज़ आ रही हैं। वो स्पाइडरमैन की सीरीज़ ख़त्म हो गई तो अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ नई शुरू हो गई, सुपरमैन की सीरीज पुरानी ख़त्म हुई, कार्टून्स आए, फिर अभी दोबारा आ गया मैन ऑफ स्टील आ गई मूवी। ये बार बार दिखा रहे हैं कि एक सुपर ह्यूमन ही इस दुनिया के मसाइल हल कर सकता है, आम बंदे की बस की बात नहीं है। फिर इसी तरह मूवीज़ के अंदर ये एक सेवियर का कॉन्सेप्ट भी देते आ रहे हैं, एक प्रॉमिस्ड, जिस तरह उनके यहाँ प्रॉमिस्ड मसाया है, ये एक प्रॉमिस्ड वन है कि एक वादा किया गया है, प्रोफेसी है, पेशेंट गोई है कि एक आएगा। मूवीज़ के अंदर भी इस किस्म के ट्रेंड्स को ही शो कर रहे हैं। 99 के अंदर 2003 या 2002 फिर 2004 मैट्रिक्स मूवीज़ के 3 पार्ट्स आए थे। मैट्रिक्स मूवी के अंदर क्या दिखाया था कि कंप्यूटर सिस्टम मैट्रिक मशीन जो है उसने पूरी दुनिया को किया हुआ, लोग जो हैं वो एज फ्यूल काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स के लिए, और उनका वो ब्रेन के अंदर इल्यूजन के अंदर वो एक ख्वाब देखे जा रहे हैं, उसी के अंदर ही नस्लें गुजरती जा रही हैं और वो कंप्यूटर जो है, मशीन जो है, मैट्रिक्स मशीन, उसने ओवर पावर किया हुआ है, लेकिन एक आएगा जो उसको बचा देगा, सारी इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को एक सेवियर आके बचाएगा। उसका नाम मूवी के अंदर क्या है? नियो। और उसके अंदर एक और चीज़ भी है, उसके अंदर ये भी बताया है कि एक बस्ती सिर्फ रह गई है पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की, और वहाँ से वो अपने लास्ट एफर्ट्स कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। और उस बस्ती का क्या नाम है? ज़ायन। यही ज़ायनिज्म से, ज़ायन नाम है उस बस्ती का। उसने मूवी देखी भी, आपने कभी परवाह ही ना की हो इन चीज़ों के पीछे कि हिडन बातें क्या इनके पीछे चल रही होती हैं। 2001, 2002, 2003 के अंदर तीन पार्ट की मूवी आई थी, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। रिकॉर्ड तोड़े इस मूवी ने, मैट्रिक्स ने भी रिकॉर्ड तोड़े थे, इस मूवी ने भी रिकॉर्ड तोड़े थे। उसके अंदर क्या है कि ईवल डार्क सौरन जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर टेक ओवर करने के लिए तैयार है, और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो बिखरे हुए हैं, वो उससे लड़ने की ताकत नहीं रखते, लेकिन एक प्रोफेसी चली आ रही है उनके यहाँ कि ह्यूमंस की रेस के अंदर एक किंग आने वाला है जो उनको बचाएगा। एरागॉन नाम रखा है उन्होंने मूवी के अंदर उसका, और उसका लास्ट पार्ट भी वही है, द रिटर्न ऑफ द किंग। जब 2006 के अंदर मूवी आई थी सुपरमैन रिटर्न्स, तो BBC के ऊपर एक मूवी के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, तब उन्होंने क्रिश्चियन बिलीफ को कंपेयर किया था, जीसस रिटर्न्स वर्सेस सुपरमैन रिटर्न्स, और ये सारे कॉन्सेप्ट कंपेयर करके बताए थे कि जो जीसस की बातें हम मानते हैं और जो स्पाइडरमैन की चीज़ें हैं उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज शो की गई हैं। फिर इसी तरह 2008 के अंदर मूवी आई थी 10,000 BC, उसके अंदर भी ये दिखाया था उन्होंने कि एक करप्ट टायरेंट किस्म का किंग है, वो दुनिया से लोगों को गुलाम बना बना के अपने पास जमा करता जा रहा है, लेकिन एक प्रोफेसी उसके यहाँ चली आ रही है, एक ख़ास तारों का एक जब फोकस आ जाएगा तो एक उन्हीं गुलामों में से कोई बंदा आएगा जो उसको किल करेगा, मारेगा, और उसकी बादशाहत को वो बिलाखिर ख़त्म करेगा। इसमें मूवीज़ और भी हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ नारिया जो है उसके भी पार्ट्स आए कि एक सेवियर आएगा और वो इस तरह आके सबको बाल बचाएगा, वो जो विच बनाई हुई है उसके अंदर उससे लोगों को बचाएगा। पुरानी मूवी अर्ली 80s के अंदर आई थी, शायद 84 के अंदर मूवी आई थी, फिर उसका पार्ट 92 के अंदर आया, फिर बाद में 2003 के अंदर, फिर 2009 के अंदर फोर्थ पार्ट आया उसका, टर्मिनेटर। उसके अंदर भी क्या है, रोबोट्स ने, मशीन्स ने दुनिया के ऊपर टेक ओवर कर लिया, ह्यूमन रेस हार रही है, वो बस एक प्रोफेसी चली आ रही है, जॉन कॉर्नर एक बंदा है जो पैदा होगा, वो ह्यूमंस को बचाएगा। ये तो चंद मूवीज़ हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज है, क्या पता कितनी मूवीज़ और आई हों जो इसके अंदर ये बातें हों और मुझे नहीं पता, होता है आप लोगों को बेहतर पता हो या होता है अब आप लोग उस नज़र से देखें। ये सब क्या है, ये ह्यूमंस ही को, हमें ही, ह्यूमन रेस ही को तैयार किया जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि चले उन्होंने तो जो छक्के मारने थे मार लिए, वो जो प्लान बना रहे हैं मूवीज़ के वो भी कर रहे हैं, इवन हम लोगों ने भी, इधर बॉलीवुड की भी मूवी आ गई थी सुपर हीरो की, हाँ दूसरी मूवी का भी नाम ले लिया, ठीक है, तो बॉलीवुड की भी मूवीज आ रही हैं इस बारे में। ये ह्यूमन रेस को तैयार किया जा रहा है उसी चीज़ की तरफ कि हम सब बिल आखिर वन लीडर के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी गवर्नमेंट को, उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, ये तो मूवीज़ की बात हो गई, सच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को झूठे काने दज्जाल से ख़बरदार किया है, और सुनो मैं भी तुम्हें उससे ख़बरदार करता हूँ, तुम्हारा रब काना नहीं है, एक आँख वाला नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है ये, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की ये भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको उसी तरह ख़बरदार कर रहा हूँ जिस तरह नूह ने अपनी कौम को ख़बरदार किया था, नूह अलैहिस्सलाम इस दौर से, इसका मतलब है पैगंबर जो थे वो अपनी कौमों को ख़बरदार करते आ रहे थे। अब बाकी उन पैगंबरों की कौमों का हमें नहीं पता, जिसके बारे में हमें क्लियर कट पता है वो हमें पता है कि ये जो क्रिश्चियंस हो गए, ये ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनके अंदर मैंने आपको बता दिया कि एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ भी मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी सही मुस्लिम की है, आदम से लेकर क़यामत तक इंसानियत के ऊपर दज्जाल से बड़ा फितना और कोई नहीं होगा। और ये बात नोट करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों का जिक्र किया है, मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर वन का कहीं जिक्र नहीं मिलता हदीस के अंदर, वर्ल्ड वॉर टू का भी जिक्र नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड वॉर्स थी जिनके अंदर करोड़ों लोग मरे थे, ये विद कंपैरिजन टू जो होने वाला है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें भी बताई होती हमें कि दुनिया के अंदर ये हालात भी होने वाले हैं। दज्जाल के बारे में आगे बताने से पहले एक और हदीस ये बता दूँ, सही मुस्लिम की किताबुल ईमान की 398 हदीस है कि आप सल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़ाहिर होने के बाद, यानी कि जब वो आ जाएंगे तब किसी का ईमान लाना उसको कतन फ़ायदा नहीं दे सकेगा। अगर पहले से वो बंदा उसके चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो उसका आने पे वो कुछ कर नहीं पाएगा। उनमें से एक चीज़ आप सल्लम ने गिनवाई, वो दज्जाल का आना होगा। जब दज्जाल आ जाएगा तब किसी का ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा, इनफैक्ट ईमान लाएगा ही कोई नहीं। दज्जाल बाई आंख से काना होगा। मैं हदीस के एक्सट्रैक्ट्स पढ़ के बताता जाऊंगा, ठीक है? अगर मैं एक एक हदीस को पूरा पूरा पढ़ के बताता रहूंगा तो बात बहुत लंबी होती जाएगी। दज्जाल बाई आंख से काना होगा, उसके साथ जन्नत होगी और जहन्नम होगी, लेकिन उसकी जहन्नम दर हकीकत जन्नत है और उसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम है। दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि वो हर शहर में घूम सकेगा 40 दिनों के अंदर। 40 दिन के अंदर वो पूरी दुनिया के एक एक शहर, एक एक बस्ती में घूम फिरेगा। एक और हदीस के अंदर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसका इक्तदार या उसका जो दौर होगा वो 40 दिन का होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका पहला दिन जो है वो तुम्हारे एक साल के ऊपर होगा। साहबा ने पूछा, अब देखिए साहबा की सोच कैसी होती थी, उन्होंने पहला सवाल क्या पूछा, अल्लाह के रसूल ये बताएं कि उस दिन पर हम लोग नमाजें आजकल के हिसाब से पढ़ेंगे या उस साल में बस 5 नमाजें ही बनेंगी हमारी। उनको किस चीज़ की फिक्र थी, नमाजों की फिक्र थी कि अगर ऐसा दिन आता है कोई तो नमाजें हमने किस तरह पढ़नी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, नमाजें तुम लोग अपने हिसाब से पढ़ो, उसका हिसाब कर लो और फिर नमाजें पढ़ते रहना उस दौरान। उसका अगला दिन जो है वो तुम्हारे एक माह के बराबर होगा, उसका अगला दिन जो है वो तुम्हारे एक हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी जो दिन है वो आम दिनों के बराबर होंगे। एक स्कॉलर हैं, उन्होंने पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक रहा हुआ है किसी दौर के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर होते हैं वो। आप समझ लें कि उनका खासा है, उनकी स्पेशलाइजेशन है कि वो इन्हीं किस्म के हदीसों के ऊपर बात करते रहते हैं। उन्होंने इसकी एक तशरीह बयान की है कि दज्जाल और ये जो 40 दिन से मुराद क्या है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, उसकी बात, उनकी बात को मैं पार्शली एक्सेप्ट करता हूँ, पार्शली नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो पहला साल का जिक्र है ये असल में इशारा है ब्रिटिश एम्पायर की तरफ, कि जब यहूदियों का काम पूरा करके दे रहे होगा ब्रिटिश एम्पायर। फिर उसके बाद उन्होंने जिक्र किया है जो अगले दिन का इशारा है, जो महीने का होगा, वो उससे मुराद है अमेरिकन एम्पायर का। अमेरिका सुपर पावर जो होगा उसका ड्यूरेशन कम होगी, ब्रिटेन तो बहुत सही सैकड़ों साल तक रहा था ना सुपर पावर, अमेरिका उतने साल तक नहीं रहेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अमेरिका है, फिर उसके बाद हफ्ते से मुराद इसराइल का टाइम है, और आगे फिर एक्चुअल दज्जाल ने खुरूज होना है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, हो सकता है। दज्जाल से मुतालिक जो अहदीस है इनके अंदर डेफिनेटली सिंबलिज्म यूज़ हुआ है, सिम्बॉलिक चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। एक और हदीस है जामिल सगीर की, सही हदीस है, जिसके अंदर फरमाया आप सल्लम ने, दज्जाल के खुरूज से पहले 3 साल शदीद गैर साली के होंगे। पहले साल में अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा और आसमान एक तिहाई बारिश को रोक लेगा, यानी कि अगर दुनिया के ऊपर 100% बारिश जो होती थी अब कितनी होगी, उसका 1/3 रुक जाएगी, 66% के करीब बारिश होगी। उससे अगले साल एक और एक तिहाई जो है वो रोक दिया जाएगा, और आखिरी साल जो होगा वो कोई बारिश नहीं होगी। इसका मतलब लिटरल भी हो सकता है, इसका मतलब सिंबॉलिक भी हो सकता है, कि हो सकता है इससे मुराद हो बेबरकती और ज़रूरत अशिया जो हैं उनकी कमी, कि पानी है भी दुनिया के अंदर उतना ही पानी है लेकिन पूरी दुनिया जो है वो पानी को तरस रही है। इस टाइम पानी की क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो चीज़ें बारिश से प्रोड्यूस होती हैं इकॉनमी, वो चीज़ें उनके अंदर बेबरकती आ जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा 33% एकदम से फॉल गिरेगा, इन्फ्लेशन हाई पे हाई होती जाएगी और हालात बुरे होते जाएंगे, फिर और बुरे हालात होंगे, फिर और बुरे हालात होंगे। वो भी मुराद हो सकता है, लिटरल मुराद भी हो सकता है कि वाकईतन बारिश ही रुक जाएगी। 40 दिन का मैंने जिक्र किया था, आप सल्लम ने फरमाया कि वो 40 दिन में दुनिया के एक एक शहर में घूम फिर लेगा, سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرشتوں سے کی ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مدینہ کے بارڈرز تک پہنچے گا تو اس میں ایسے خوفناک زلزلے آئیں گے, 3 زلزلے, اور مسلمانوں میں جتنے بھی منافق ہوں گے وہ دوڑیں گے دجال کی طرف کہ یہ ہمیں بچا سکتا ہے. مسلمانوں میں جتنے منافق ہوں گے وہ دوڑیں گے. اس وقت جو دنیا کے اندر اس قدر آبادی ہے مسلمانوں کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی چھانٹی کرنی ہے قیامت سے پہلے, یہ کلیئر ہو جائے کہ کون منافق ہے کون سچا مومن ہے. تو منافق جتنے بھی ہوں گے وہ بھاگیں گے. دجال کے بارے میں کس کو نہیں پتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے ماتھے کے اوپر واضح ہوگا کفر کا لکھا ہوا, اس کا کفر ظاہر ہوگا, لیکن اس کو سمجھ یا اس کو پڑھ صرف اور صرف اہل ایمان ہی سکیں گے. جن کو واقعی مومن ہوں گے وہ سمجھ پائیں گے, باقی لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس سواری پہ سوار ہوگا اس کا حمار, اس کا گدھا جو ہے, اس کا جانور جو ہے, اس کا میول, اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ایک اور حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس طرح تیز دوڑے گا جس طرح بادل کو تیز ہوائیں لے کے چل رہی ہوں. اس کی سواری سے مراد کیا ہے؟ آج کل کا ایئر کرافٹ. اس کے دو کانوں کے بیچ اتنا فصل ہوگا, اس کی سپیڈ اتنی ہوگی, ایئر کرافٹ مراد ہے آج کا. صحیح مسلم کی ایک بہت طویل حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہے, کچھ صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے اس بات سے اور اپسیٹ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظاہر ہونا ہوا تو تمہیں بچانے کے لیے میں کافی ہوں گا, لیکن میرے مرنے کے بعد اگر اس طرح ہوا تو پھر ہر آدمی اپنا اپنا بچاؤ خود کرے گا, اس نے پھر خود اپنے آپ کو بچانا ہے. اب میں ایکسٹریکٹ صرف اس کے اندر سے پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں. 40 دن کا ذکر اسی حدیث کے اندر تھا, جو بارش والی رفتار کا ذکر تھا وہ بھی اسی حدیث کے اندر ہی تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ہر جگہ ٹریول کرے گا تو کیا فرمایا, وہ ہر ایک تک ہر قوم پہ اپنے ایمان لانے کی دعوت دے گا, جو کوئی اس پہ ایمان لے آئے گا اس کی دعوت قبول کر لے گا, وہ اس کے لیے آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اور ہریالی یعنی کہ ویجیٹیشن جو ہے وہ نکالے گا, اس کے چرنے والے جو جانور ہوں گے ان کے اوپر خوب گوشت چڑھا دے گا, اور اس کے جو جانوروں کے جو تھن ہوں گے جسے دودھ نکلتا ہے ان کو وہ خوب بھر دے گا ان کے لیے, اور جو قوم اس کو انکار کرے گی, رد کرے گی, اس کو نہیں مانے گی, اس کے اوپر کیا کرے گا, اس کے اوپر وہ قحط سالی اور اس کے جانوروں کو کمزور, ان کے مال کو ختم کر کے رکھ دے گا, ان کی زمین کو بنجر کر دے گا, اور زمین کے خزانے اور آسمان کو بھی ان کے اوپر روک دے گا. مراد کیا ہے اس سے؟ آج کل کی سائنس اور ٹیکنالوجی, یہ قوت آلریڈی اچیو ہو چکی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے. وہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جانور اب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنے حساب سے, کیا کہتے ہیں, یہ دیسی مرغی ہے, یہ فارمی یا ولیتی مرغی ہے. یہ پہلے ولیتی مرغی کہتے تھے, اب اس کو فارمی مرغی بول دیتے ہیں, اور اگر آپ زیادہ انگلش اورینٹیڈ ہیں تو آرگینک اور انآرگینک کہتے ہیں دونوں چیزوں کو. تو مراد کیا ہے اس سے؟ پاکستان کے اندر یہ جو KNN اور یہ جتنے بھی آتے ہیں نا بنے بنائے فوڈ کا میٹ کٹ ہو کے آتا ہے, ان کے جو چکس ہوتے ہیں, چوزے ہوتے ہیں نا, یہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. یا جس طرح مثال کے طور پہ دودھ نیا آیا ہے پریما ملک جو ہے وہ کیا لکھا ہوتا ہے, آسٹریلین کاؤز یوز ہوئی ہیں اس کے اندر, یعنی کہ پاکستان میں امپورٹ کیا انہوں نے آسٹریلین کاؤز اور ان کے دودھ کو یوز کیا جا رہا ہے. یہ وہ تمام جانور ہیں جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں, ان کا گوشت زیادہ ہوگا. جو دیسی مرغی ہوگی اگر آپ نے کبھی کھایا ہو اس کا گوشت, تو آپ کو پتلی پتلی سوکھی سوکھی ٹانگیں ہوں گی, آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اس سے, اور یہ اگر دوسری کھائیں گے نا تو ایسی موٹی موٹی جو ہے نا اس کے پیس ہوں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں نا وہ یہ چیز ہے. جانوروں کا آپ دیکھیں کہ جانوروں کو انجیکشنز اور ان کی فیڈ ایسی دی جاتی ہے جس کے تھرو ان کے ملکنگ زیادہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آسٹریلین کاؤز اور یہ باہر کی کاؤز ہیں, یہ امپورٹ ہونا شروع ہو رہی ہیں کہ ان کا پروڈیوس زیادہ ہے. میں نے ایک اور لیکچر کے اندر ٹرپس کا ذکر کیا تھا. ٹرپس ایک ایسا ایگریمنٹ ہے سیڈس کا, بیجوں کا. وہ کیا ہے؟ اگر ہم باہر سے وہ والے بیج امپورٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا, कम पानी से वो चलेंगे, कम टाइम के अंदर ज़्यादा फसल दे देंगे, बजाय कि आप 6 महीने इंतजार करेंगे 3 महीने के अंदर वो हार्वेस्ट दे देंगे। कीड़ा उनको कम अफेक्ट करेगा, यानी कि ज़्यादा टफ होंगे वो, उनके ऊपर ज़्यादा फल आएगा, चाहे वो दाने थे या फ्रूट्स थे या सब्जी थी, जो भी था ज़्यादा फल देंगे वो, ज़्यादा आउटपुट देंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक कैच है उसके अंदर, वो कैच क्या है, वो जो उसका फल होगा, उसका जो सीड होगी ना, वो डेड होंगे। जो घरों के अंदर मुर्गियों के अंडे हम लाते हैं, ये अगर आप इसको पड़े रहने देना, इस तरह नहीं होगा कि हफ्ते के बाद वो देखो चूजा निकल आया इसमें से, ऐसा नहीं होगा, ये डेड अंडे होते हैं, इन अंडों ने कभी भी प्रोड्यूस नहीं करना। हाँ, जिसको हम कहते हैं ना देसी अंडे हैं, ये वो होते हैं जिनसे चूजा निकल सकता है। इनको देखने की ज़रूरत होती है वाकई के इसमें अगर रेडनेस तो नहीं नज़र आ रही है, ऐसा ना हो कि अंदर पुराना हो तो उसके अंदर वो डेवलप होना शुरू हो चुका हो। बारिश और ये तमाम चीज़ों से क्या मुराद है, आर्टिफिशियल रेन भी होती है। आर्टिफिशियल रेन पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ ने भी तजर्बा किया था, ये वाला जिस तरह अभी ये सर्दियाँ गुजर रही हैं और बारिश हो ही नहीं रही, इस तरह 99 के अंदर जब जिस साल मुशर्रफ आया था वो साल इस तरह था कि सर्दियाँ गुजरती जा रही थी और बारिश ही नहीं हुई थी। तो पाकिस्तान ने भी एक तजर्बा किया था आर्टिफिशियल रेन का। उसमें ये होता है कि जहाज़ के ऊपर से ऐसा स्प्रे चीज़ें फेंकी जाती हैं, बादल आए और बादलों के ऊपर गिरते हैं, तो वो कि वो ट्रिगर करते हैं क्राउड बर्स्ट को। अगर आप में से किसी का जाना हुआ हो, अल्लाह ने तौफीक दी हो सऊदी अरब उमरे के लिए, हज के लिए, या चले जाने की ज़रूरत नहीं था, ख़र्चा ना भी करें आप लोग, गूगल मैप्स के ऊपर आप जाके देख लें सिंपली। बहरहाल जहाज़ के नीचे अगर आप देखिए ना, आपको पूरा सहरा ही सहरा है, सहरा ही सहरा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट दरमियान के अंदर बड़े बड़े ग्रीन सर्कल्स नज़र आएंगे आपको, बड़े बड़े ह्यूज ग्रीन सर्कल्स, क्योंकि इतने ह्यूज कि अगर आपको जहाज़ में नज़र आ रहे हैं तो ऑफकोर्स सरफेस के ऊपर कितना बड़ा होगा वो, जैसे स्टेडियम होता है इस जैसे। वो क्या, आर्टिफिशियल इरीगेशन हुई भी है कि समंदर से पानी वहाँ से ला के खींच के उसको साफ करके, समंदर के पानी से तो नहीं फसल उगेगी, वो तो इंतहाई सॉल्टिश होता है। वो क्या किया जाता है कि एक शावर होगा, शावर के ज़रिए उसको यू राउंड के अंदर पानी फैलाया जाता है उसके, तो एक बहुत बड़ा सा उसका रेडियस, बहुत ह्यूज रेडियस बनता है, जिस तरह बारिश होती है वो उस तरह का इफेक्ट देता है। जो कोई तावुन करेगा, जो कोई ईमान लाएगा उसके ऊपर, उसके लिए वो रिस्क के ख़जाने खोल देगा, आसमान को हुक्म देगा वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा अपने ख़जाने निकालो तो ज़मीन ख़जाने निकालेगी। हम निकाल सकते हैं मिनरल ज़मीन से, हम तेल निकाल सकते हैं, हाँ अगर हम तावुन करेंगे इनके साथ तो फिर हमारी ज़मीन से ये हमें मिनरल्स निकाल के देंगे, हमारी ज़मीन से ये हमें गैस निकाल के देंगे, ऑयल भी निकाल के देंगे। कितनी खबरें हम सुनते आ रहे हैं, बलूचिस्तान में एक नया मालूम हो गया, हमें तो पता नहीं एक किस तरह करते हैं प्योरीफाई से, किस तरह करना है, बाहर की जब तक कंपनीज नहीं आएंगी तब तक हम बेकार हैं बिल्कुल ही। ये जो बातें हो रही हैं ना, ये साइंस की बातें हो रही हैं, जो खुदाई पावर्स है ना, ये साइंस के ज़रिए है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया हुआ है, लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया हुआ है, सख़र लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, तुम्हारे लिए मैंने मुस्तखिर कर दिया है उसे, तुम अगर एक ख़ास तरीके से इसको स्टडी करोगे ना तो तुम्हारे कंट्रोल में ये चीज़ आ जाएगी। साइंस के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, तो साइंस जो है वो दजाली कुव्वत इख्तियार करती जा रही है, जब वो बग़ैर हदायत के है, बग़ैर हदायत के है तो साइंस ये चीज़ करती जा रही है चीफ। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मुनाफिक जितने भी होंगे वो तमाम के तमाम दौड़ेंगे, लपकेंगे दजाल की तरफ कि ये हमें बचा सकता है, वरना तो हमारी जॉब, हमारा कैरियर, हमारे ये हालात, हमारे वो, हमारा आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, हमें यही बचा सकता है, वो उसकी तरफ दौड़ेंगे लपकेंगे। एक हदीस मैंने पहले सुनाई थी आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल को मानने वालों में, उसके पैरोकारों में अक्सरियत जो होगी वो निसा की होगी, औरतों की होगी। क्यों? क्योंकि वो उनको सब्ज बाग दिखाएगा, औरतों की आज़ादी, यहाँ तो तुम लोग देखो किस कदर तुम लोगों के ऊपर सख्ती है, यहाँ पे फलानी चीज़ की इजाज़त नहीं, इस्लाम तो आपको इनहेरिटेंस का कंप्लीट राइट नहीं देता, आपको हाफ़ राइट देता है इस्लाम इनहेरिटेंस के अंदर, आपको फलानी चीज़ की इजाज़त नहीं है, आपको तलाक की इजाज़त नहीं है, एज इफ़ के तलाक तो लाजमी देनी ही देनी है आपने जैसे शादी करनी है ना, तलाक देनी है, ऐसा हक है आपको चाहिए चाहिए। आपके एजुकेशन के ऊपर ये मसला है, आपको वो है वो, आपको तो आज़ाद को कपड़े भी आप पैसे नहीं पहन सकते अपनी मर्ज़ी के, तो वो आपको वेस्ट आपको ख्वाब दिखाएगा, दज्जाल जो है वो ख्वाब दिखाएगा वीमन लिब का, इसलिए औरतें जो हैं वो भागेंगी और उसकी पैरवी करेंगी। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी हदीस का बाकिया हिस्सा है, ये हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर, यहाँ तक कि एक मोमिन शख्स अगर होगा तो वो अपने घर के अंदर अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, उन तमाम को बांध बांध के या कैद करने की कोशिश करेगा कि ये कहीं उसके सफ़ों में ना जा मिले, और वो निकलने की कोशिश करेंगे किसी तरह से हम वहाँ तक पहुँचें। ये हमें दुनिया के अंदर चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, नेमतें या जो कुछ भी है दुनिया का वो हमें ये प्रोवाइड कर सकता है। दज्जाल की मज़ीद चीज़ों के अंदर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अंधा होगा मादर ज़ात अंधा, यानी कि पैदाइशी तौर पे जो अंधा था, बाय बर्थ ब्लाइंड था, उसको वो बिनाई दे देगा। क्या ये इस टाइम हो नहीं रहा सर्जरी के थ्रू? कोड़ी को वो सेहतयाब करेगा। लेप्रसी जो है वो उस दौर में ला इलाज बीमारी होती थी, उसका इलाज आ गया कि नहीं आ गया लेप्रसी का? पाकिस्तान के अंदर भी जर्मन हॉस्पिटल है पिंडी के अंदर, लेप्रसी हॉस्पिटल जर्मन हॉस्पिटल है, मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज का हॉस्पिटल है वो वाला। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर देगा, एक बंदे को चीरेगा और उसके दो हिस्से कर देगा, उसको दोबारा जोड़ के ज़िंदा कर देगा। हो सकता है बहुत करीब में सर्जरी इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपकी बॉडी के दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को अलहदा करके दोबारा जोड़ दिया जाए और आप के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। अभी भी इस तरह के बहुत सारे काम हो जाते हैं सर्जरी के थ्रू, आपके ऑर्गन निकाल के ऑर्गन को अलग से ठीक किया जा रहा होगा और आपको मशीनों या किसी और सहारे के ज़रिए चला दिया जाता है। हाँ जी, वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या आर्टिफिशियल लंग्स, ये तमाम चीज़ें वो हैं, लेकिन मैं भी बात कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को चीरेगा दो हिस्सों में करके और बाद में दोबारा जोड़ सकेगा उसे, वो दोबारा जोड़। हो सकता है सर्जरी इस लेवल तक पहुँच जाए, मुर्दे को दोबारा ज़िंदा कर देगा। क्लोनिंग जो है उसके थ्रू ये पॉसिबल है कि जो बंदा मर चुका है या पहले का मरा हुआ है, इवन कब्र के अंदर, उस कब्र में से उस बंदे के कुछ हिस्सा निकाला जाए, हड्डियों में से चंद सेल्स, और उस जैसा दोबारा एक बंदा बच्चे की फॉर्म में पैदा कर दिया जाए। क्लोनिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। क्लोनिंग कोई नई बात नहीं है, 95 के अंदर पहला एनिमल क्लोनिंग जो पब्लिक हुई थी, वो जो शीप बनाई थी डॉली शीप, क्लोनिंग पहले की हुई थी। हाँ, वो अभी सिर्फ ये बहस चल रही है कि ह्यूमन क्लोनिंग की जाए या ना की जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 1955 में मरा था तो उसको जब दफनाया गया या उसको जब वेस्ट किया गया उसकी बॉडी को, तो उसका ब्रेन को नहीं वेस्ट किया गया, उसका ब्रेन प्रिजर्व में पड़ा हुआ है। माइकल जैक्सन जब मरा है तो माइकल जैक्सन के ब्रेन को प्रिजर्व में रखा हुआ उन्होंने, कि या तो हम इसके ब्रेन को हम कुछ अंडरस्टैंड कर सकें क्रिएटिविटी, या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो थिंकिंग पावर थी, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन तो उस दौर का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसकी तो ये स्टेटमेंट है कि आई वॉन्ट, और ज्यूइश था ये मैं बता चुका हूँ पहले, और उसकी स्टेटमेंट क्या है अपने बारे में, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ गॉड थिंक्स, मैं उस सोच की उस लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ कि खुदा किस तरह सोच रहा होता है, या उसके प्लान्स क्या हैं, या वो क्या चाह रहा है। तो इनके ब्रेन्स को बचाया हुआ है, या किसी की बॉडी को या उसमें से निकाल के चंद सेल्स निकाल दिए जाएँ, क्लोनिंग हो जाएगी उसकी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो जब जादू वाले लेक्चर्स हुए थे तब मैंने वो बात सुनाई थी आप लोगों को, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इब्ने माजा की हदीस है किताबुल फितन में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो है उसकी मदद के लिए शयातीन हाजिर होंगे। जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो तमाम शैतानी कुव्वतें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। ये मैंने हिस्ट्री ऑफ मैजिक वाले लेक्चर्स जो थे उनके अंदर बताया था कि ये जितने भी इस टाइम पावर्स हैं दुनिया के अंदर, ये टेम्पलर्स, ये डेविल वर्शिपर्स हैं, इनका मैजिक है, इसका नाम है कबाला, ये उसको प्रैक्टिस करते हैं, डेविल वर्शिप करते हैं ये। सेटनिज्म भी एक चर्च का नाम है, एक बाइबल ऑफ सेटन भी कहलाती है। तो शायद जब दज्जाल ज़ाहिर होगा, मैंने बताया था कि जितने भी शयातीन हैं वो तमाम उसकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। तो दज्जाल के पास शयातीन हाजिर होंगे, वो एक शख्स के पास आएगा और उसको कहेगा कि मुझ पर ईमान लाओ, तो वो कहेगा मैं तो तुम्हें नहीं मानता। कहता अच्छा चलो, तो मेरी कुदरत के ख़जाने देखना, अब तुम मेरी कुदरत और मेरी ताकत को अब तुम ज़रा विटनेस करना। वो उसके मरे हुए माँ बाप, उसके मरे हुए रिश्तेदार के, वो उनकी कब्रों के पास खड़ा होकर उनसे कहेगा कि खड़े हो जाओ, निकल आओ यहाँ से, तुम मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें, और वो निकल आएंगे ज़िंदा होकर, दोबारा हाज़िर हो जाएंगे उसके सामने, और उस शख्स के ऊपर आके कहेंगे कि क्या मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मुझे नहीं पहचानते, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा फलां हूँ, मैं तुम्हारा फलां हूँ। ये देखो, यही तो है खुदा, मानो इसे, ये है तुम्हारा खुदा। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तमाम हदीसों में अक्सर के एंड में ये फरमाया, वह जान रखो तुम्हारा रब काना नहीं है, तुम्हारा रब काना नहीं है, तुम्हारा रब जो है वो एक आंख वाला नहीं है, ये बात जान रखो। तो लेकिन आप ने साथ वजाहत कर दी कि ये होगा क्या, जाहिर बात है वो खुदा तो नहीं है ना, असल में तो नहीं जिंदा कर सकता, वो होगा क्या, वो शयातीन उसकी मदद करेंगे, शयातीन इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि एक बंदे की शक्ल में आ जाएंगे, उसके माँ बाप का रूप इख्तियार कर लेंगे और कब्र से निकल के उसके सामने हाजिर होंगे, देखो मैं, मुझे देखो इसने ज़िंदा कर दिया, दोबारा ज़िंदा कर दिया। अहियाए मौता, जिसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे, ये तमाम मौजज़ात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वो करके दिखाएगा कुदरतें अपनी, ये मौजज़ात हैं जो अल्लाह ताला ने अता किए हुए हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, ये उन चीज़ों का अक्सर और बेशतर जिक्र हो रहा है। इस क्लास से मुतल्लिक एक बात मैं क्लेरिफिकेशन दे दूँ कि क़यामत से मुतल्लिक या क़यामत से पहले की पेशिन गोइयाँ इस क्लास का मकसद नहीं है, जुडिज़्म और दज्जाल से मुतल्लिक बात थी, इसलिए मैं आपको उस तरह करके बयान कर रहा हूँ। दज्जाल के बारे में आप सबसे फरमाया है कि इस्फहान के जितने यहूदी हैं वो उस पर ईमान ले आएंगे, तमाम दुनिया के यहूदी हैं वो उसके जान मिलेंगे। इस्फहान ख़ास जो जगह है, इसके बारे में आपने उसके भी यहूदी, यानी कि वहाँ से भी यहूदी आना शुरू हो जाएंगे उसके पीछे। अब इस्फहान ईरान का एक शहर है, ईरान के शहर के अंदर यहूदी कहाँ से आ गए? ईरान के इस्फहान के इलाके में वाक़ईतन आजकल यहूदी आबाद हैं, और उन्हीं के इलाके का एक सेनेटर या पार्लियामेंटेरियन भी है जो ज्यू है और ईरानी पार्लियामेंट या सेनेट का मेंबर भी है। तो तमाम यहूदी, तमाम जो कुव्वतें हैं वो दज्जाल के पास जमा हो जाएंगे। अब इस दज्जाल से मुराद कौन है? दज्जाल, शख्स दज्जाल जो है, एक तो है ना निज़ाम, और पूरी दुनिया का निज़ाम ऐसा बन जाएगा जो दज्जाल को एक्सेप्ट करेगा, मुंतज़िर होगा बल्कि। और जैसा मैंने बता दिया कि दज्जाल जो है उसके साथ जो जो तआवुन करेगा वो उसको इस तरह बहकाएगा। दज्जाल के बारे में आप ये सोचें कि जो कुव्वतें जितनी भी उसकी मेंशन की गई हैं, इन कुव्वतों से अगर आप तसव्वुर करें, मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैं अपना बैंक अकाउंट छोड़ देता हूँ, दज्जाली निज़ाम है ये, बैंक अकाउंट छोड़ देता हूँ, क्या ये रिस्क के ख़जाने तंग करने वाली बात नहीं हो जाएगी अपने? आप ये तसव्वुर करते हैं कि मैं ये जो चीज़ें ना फेसबुक और ये तमाम चीज़ें, इनको मैं बॉयकॉट करता हूँ इन चीज़ों से, क्या ये अपने आपको अपना करियर थोड़ा रिड्यूस करने वाली बात नहीं हो जाएगी? आप इस चीज़ को अपने जहन से निकाल देंगे, मैंने बाहर जाना है, यूरोप जाना है, इन चीज़ों को, तो आपको कहिए तो कितना बैड मूव है आपके करियर का। आप ये डिसाइड करें कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज की खिदमत नहीं करनी, तो ये क्या है, ये कितना बैड मूव है आपके करियर का। आपको नोकिया और ये बाकी कंपनी जो जॉब्स दे रही होंगी टेलीनॉर इन कंपनीज़ के अंदर, तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे? नहीं, ये तो कितना बैड मूव है आपके करियर का। तो रिस्क के ख़जाने जो हैं वो उसके लिए तंग कर देगा जो इस पर ईमान नहीं लाएगा, जो मानेगा उसे, उसके लिए वो तमाम चीज़ें खोल देगा, उसके लिए आसाइशें लग्जरीज होंगी और दूसरों के लिए तंगी होगी। दज्जाल से मुराद क्या है? दज्जल जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है मुलम्मा साजी, रंग चढ़ावा किसी और चीज़ का। वो प्रिटेंड करेगा, वो रब होने का, खुदा होने का शो करेगा, प्रिटेंड करेगा कि मैं हूँ खुदाई पावर्स वाला। वैसे तो एक और हदीस भी आप सल्लम की, जिसके अंदर आप सल्लम ने फरमाया है, तुम तकरीबन मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल देखोगे और उनमें से हर कोई जो होगा वो नबूवत का दावा करेगा कि मैं नबी हूँ अल्लाह का। यानी कि झूठे नबी को आप सल्लम ने दज्जाल करार दिया। दज्जाल तीन सेंस में यूज़ होता है लफ्ज़, एक दज्जाली निज़ाम है या दज्जाली फितना है जिसमें हम लगे हुए इस वक्त, एक दज्जाल है नबी की सूरत के अंदर जो झूठे नबी आएंगे, 30 के करीब आप सल्लम ने जिक्र किया उनका, फ़ी उम्मती मेरी उम्मत में से आएंगे, यानी कि क्रिश्चियन या कहीं और अगर कोई आ रहा है वो नहीं, मुसलमानों में से 30 लोग उठेंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। तो एक तो वो हो गया निज़ाम के धोखे में जो लोग पड़ गए, एक वो लोग हो गए जो झूठे नबी के धोखे में पड़ गए, जैसे हाँ कादियानी हो गए या ईरान के अंदर बहाई हो गए और जितने भी फ़िरके हैं, अगर वो किसी और नबी के कायल हो गए हैं तो वो धोखे में पड़ गए, उनको डॉज कर लिया उसने। और बिल आखिर जो दज्जाल एक आएगा वो होगा खुदाई का दावेदार, जिसकी ये मैंने आपको बातें बताई हैं। अब ये शख्स दज्जाल जो है जिसने खुदाई का दावा करना है, इसके बारे में ये भी तो हो सकता था ना कि आप सल्लम बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकल होकर हमें बता देते हैं, उसकी एक एक चीज़ हमें और ज़्यादा बता देते हैं। तो ये मामला ऐसा है जो आप सल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने गालिबा नहीं खोला। उसकी वजह यह है कि आप सल्लम को एक शख्स के बारे में शक हो गया था कि शायद ये वो होगा जो दज्जाल ज़ाहिर होगा। मदीना के पास आबादी में जो यहूदी आबाद थे उनमें से एक लड़का था, अभी वो प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंचा था, यानी इसका मतलब है उसकी क्या एज होगी, 13-12 साल का होगा लड़का। उसका नाम था इब्ने सयाद। इब्ने सयाद जो है उसका हदीस के अंदर काफ़ी जिक्र आता रहता है दज्जाल के मौजू से मुतल। इस शख्स के अंदर या इस लड़के के अंदर कुछ गैर मामूली किस्म की सलाहियतें थीं। मुसलमानों को शक होना शुरू हुआ कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं क्या ये दज्जाल तो नहीं है। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद भी शक पड़ गया कि हो सकता ये दज्जाल ही हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि वो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता था तो जाके उसको ऑब्ज़र्व किया करते थे, दरख्तों के पीछे कहीं खड़े होकर छुप के देखा करते थे कि वो हरकतें क्या कर रहा है ताकि मुझे ज़ाहिर हो जाए। उस तरह की बातें भी बता दिया करता था। जैसा रसूलल्लाह सल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात जब की तो आप सल्लम ने उससे पूछा कि तुम क्या क्या देखते हो। उसने बताया कि मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे पानी के ऊपर एक तख्त नज़र आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जिस चीज़ की बात कर रहा है ना ये इबलीस के तख्त का जिक्र कर रहा है, इसको इबलीस का तख्त नज़र आ रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा मैंने अपने दिल के अंदर एक बात छुपाई है, तुम अगर सच्चे हो तो तुम वो बात बता दो। उसने वो बात आधी बता दी ठीक तरह से, यानी कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक छुपी हुई बात थी। उसने असल में कहा एक बात मैंने दिल में छुपाई है, जाहिर नहीं कर रहा, तुम बताओ मैंने क्या छुपाया। उसने आधी बात बता दी, आधी बात नहीं बता पाया लेकिन आधी बात उसने बता दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया इसका मामला जो है वो मुश्तबा है, कोई एम्बिगुइटी है इसके मामले के अंदर। रसूलल्लाह सल्लम के साथ उस टाइम हज़रत उमर भी थे। हज़रत उमर ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे हुक्म दें, मैं इसकी अभी गर्दन उड़ा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अगर तो ये दज्जाल वाकईतन है जो बनेगा दज्जाल, तो इसकी गर्दन तुम नहीं उड़ा सकते, तुम इसको नहीं कुछ कह सकते, ये तो ईसा ही होंगे जो इसका मुकाबला करेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर ये नहीं है दज्जाल और तुम खाम खासी गर्दन उड़ा दोगे तो ना हक खून होगा ये। आप ने मना कर दिया लेकिन डिनाई भी नहीं किया कि ये दज्जाल नहीं था। आप के बाद फिर ये ईमान ले आया और मुसलमानों में से काउंट होना शुरू हो गया। मुसलमान इसके बारे में कहा करते थे, इवन हज़रत उमर जैसे साहबा और भी बहुत सारे उनके भी कोटेशन हैं कि हमें इसमें कोई शक नहीं था कि इब्ने सयाद दज्जाल था। अबू सईद खुदरी रज़ी ताला उन्होंने एक वाक़या बयान किया है, कहा कि हमने फिर इब्ने सयाद जब ईमान ले आया था तो हम मक्का मदीना से हम मक्का की तरफ जा रहे थे और वो हमारे साथ था। तो उसने कहा कि तुम लोग मुझे बहुत अजियत देते रहते हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं इतना तंग आ गया तुम लोगों के दज्जाल वाले ताने से कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप को रस्सी के साथ टांगूं और ख़ुदकुशी कर लूं। मैं कहते हैं कि क्या तुम ये जानते नहीं हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि दज्जाल जो है वो मक्का मदीना में नहीं आ सकेगा, मैं तो मदीना में रहा करता हूँ और अभी तुम्हारे साथ मैं मक्का ही जा रहा हूँ, क्या तुम ये नहीं सुना तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन्होंने ये कहा था कि दज्जाल जो है वो दज्जाल की औलाद नहीं होगी, जबकि मेरे जो है वो औलाद है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि इस तरह की वो बातें करता रहा और मैं बिल्कुल खामोश रहा कि बाकी बात तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दज्जाल मैं खुद उम्मती हूँ, वो खुदाई और नबूवत का दावेदार होगा, मैं रसूलल्लाहि सल्लम को मानता हूँ, तो ये तुम लोग किस तरह का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। कहते हैं मैं बिल्कुल यकीन हो गया मुझे उसके ऊपर कि हाँ ये ऐसी कह रहा है ये बात। लेकिन उसने अगली बात ऐसी कही जिस पर मैं दोबारा कन्फ्यूज़ हो गया कि उसने ये कह दिया मैं जानता हूँ कि इस टाइम दज्जाल कहाँ मौजूद है, उसके माँ बाप कौन है और वो कब पैदा हुआ। कहते ये जब उसने बात की तो मैं घबरा गया और फिर मैंने उससे ये कहा कि अगर ये दज्जाल का ओहदा या दज्जाल का काम तुम्हें दिया जाए तो तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं अगर मुझे दिया जाए तो शायद मैं ना झुठलाऊँ उसे। कहते मेरे दिल में खटका बैठ गया कि ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है मेरे साथ। फिर इसने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका वाक्या ही मिलता है कि उन्होंने एक दफ़ा इब्ने सयाद को देखा तो उसकी एक आँख जो थी वो फूली हुई थी और उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं उस पर डर गया कि एक तो इब्ने सयाद ही है और ऊपर से वही आँख वाली बात आप ने जो की हुई है तो उसकी भी नज़र आ रही है। मैं बहरहाल उससे डर गया। इब्ने सयाद फिर बिल आखिर हुआ क्या इसके साथ? साहबा कहते हैं कि वो ख़ास चंद जंगों का जिक्र करके उन वाक़ियात के बाद इब्ने सयाद का हम में से किसी को नहीं पता लगा वो कहाँ गया। मर गया, क्या हुआ उसके साथ कि ट्रैवल कर गया, अचानक गायब हो गया, हमारे इल्म में कुछ नहीं है। तो हदीसों के अंदर आपको एक हदीस ये बहुत ज़्यादा मिलेगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को एम्बिग्यूटी के तौर पे पेश किया है। एक और हदीस है जो एक सिर्फ एक वाक्य है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हदीसों में बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तमीमदारी। तमीमदारी 9 सन हिजरी के अंदर ईमान लाए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये वो सहाबी जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसका शादी या उसका निकाह जो है मैं तमीमदारी से कर देता। ये क्रिश्चियन थे और जब ये ईमान लाए थे तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लम को अपना एक वाक्या बताया था पहले का। तो आप सल्लम ने वो वाक्या सुनने के बाद मेंबर के ऊपर खड़े हुए और खुतबा दिया, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि जो बातें मैं तुम्हें बताया करता था दज्जाल के बारे में, तमीमदारी ने मुझे आके वो बातें बताई हैं और उससे तस्दीक होती है उस बात की जो मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ। तमीमदारी ने मुझे ये बताया है कि हम एक समंदरी सफ़र पर थे जहाँ पर हम एक तूफ़ान में फंस गए। समंदर की जो लहरें थी वो हमें इधर से उधर फंसाए रखा उसने तूफ़ान के अंदर एक माह तक। हम सारी नेविगेशन भूल गए, हम सारा लॉस्ट हो गए कि कहाँ पहुँचें, क्या हुआ है। बिल आखिर हमारा जहाज़ जो है वो एक वीरान जजीरे के ऊपर जा लगा। हम वहाँ से उतरे, जब जजीरे के ऊपर गए तो एक जंगल के अंदर हमें एक अजीब सा हैवान नज़र आया जिसके जिस्म के ऊपर इस कदर कसरत के साथ बाल थे कि उसका आगे पीछे पहचानना मुश्किल था। और उसने हमसे कलाम किया और उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमने मालूम किया, जसासा कौन, तुम कौन हो, जसासा क्या मतलब। तो उसने कहा इसको छोड़ो, तुम देखो आगे जाके तुम्हें एक मंदिर नज़र आएगा, उस मंदिर में कोई शख्स है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कहते हम उससे जसासा से इतने डरे कि पता नहीं क्या शैतानी चीज़ है, हम भागे वहाँ से तेज़ तेज़ निकले कि कोई हमें नुकसान ना पहुँचा दे या हमें तकलीफ़ ना दे। हम वहाँ मंदिर में गए तो मंदिर के अंदर हमने देखा एक बहुत तवील कद का भारी जिस्म का एक शख्स था जिसको बुरी तरह से जकड़ा हुआ था जंजीरों के अंदर, उसके हाथ गर्दन के पीछे और पाँव जो हैं वो उसके घुटनों के साथ बांधे हुए थे। उसने इनसे कलाम किया और कहा तुम लोग कहाँ से आए हो, मुराद तुम लोग। उन्होंने बताया इस तरह हम अरब के इलाके से आए हैं। उसने पूछा क्या फलाने दरख्तों पर फल लगते हैं कि नहीं लगते, खजूरें लगती हैं। उसने कहा लगती हैं। उसने पूछा कि बताओ फलाना दरिया बहता है कि नहीं बहता, फलानी जगह पर ये चीज़ है कि नहीं है, फलानी नहर चल रही है नहीं चल रही, इस तरह की चंद चीज़ें उसने पूछी। इजाफी तौर पर उसने ये पूछा कि बताओ अरबों के यहाँ किसी ने नबूवत का दावा तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा हाँ हमने सुना है कि एक बंदे ने नबूवत का दावा किया है। उसने कहा फिर वो वक्त दूर नहीं है कि मैं ज़ाहिर हो जाऊँगा। फिर उसके ऊपर उन्होंने मालूम किया कि क्या तुम हो कौन आखिर। तो उसने कहा कि मैं हूँ दज्जाल और एक वक्त है जब तक मुझे जंजीरों में बांधा हुआ है, फिर एक वक्त आएगा जब मुझे जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाएगा। तो रसूल सल्लम ने बस इतनी बात बताई और ये फरमा दिया कि ये जो बात मैंने कही थी और ये देखो तमीमदारी का वाक़या जो है वो उसकी तस्दीक करता है। तो ये दो बहुत डिफरेंट किस्म की बातें हैं जो शख्स दज्जाल से मुतल्लिक हैं, जो हदीसों के अंदर मौजूद हैं। अब दज्जाल एग्जैक्टली जो है वो क्या हुआ था कि क्या इब्ने सयाद जो था वही बाद में जिसके पास शयातीन उसकी हेल्प के लिए आए थे, क्या अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी है जजीरे के ऊपर, वो था जजीरे के ऊपर कोई और मखलूक है, कोई बहुत बड़ा शैतान, कोई बहुत बड़ा जिन है जो दज्जाल है, या क्या मामला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। बहरहाल ये हालात जो हैं जिन हालात में दज्जाल ने आना था वो बहुत करीब हालात हैं, बहुत करीब के हालात हैं जिनमें दज्जाल ने ज़ाहिर होना था। और जैसा मैंने बता दिया कि दज्जाल के ज़ाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा। वो इस कुव्वत के साथ इस ताकत के साथ पूरी दुनिया के अंदर चले फिरेगा और उसको चैलेंज नहीं करने वाला होगा कोई, मुसलमानों में से सिर्फ थोड़े से रह जाएंगे। इमाम मेहदी जब आएंगे तो इमाम मेहदी के साथ थोड़े मुसलमान रह जाएंगे जो उनके साथ मिल के लड़ेंगे, बाकी मुसलमान मर चुके होंगे या वो मुर्तद हो चुके होंगे, मुनाफिक होंगे, दूसरी सफ़ों में जा मिलेंगे। और आखिरी वक्त एक ऐसा होगा कि जब दज्जाल के साथ लड़ने के लिए जंग होने लगी होगी कि नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले अजान हो चुकी होगी, अकामत और नमाज के बीच में अल्लाह ताला आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेंगे, फरिश्तों ने उनको उठाया होगा, वो उतरेंगे और उनका कलाम इमाम मेहदी के साथ कि वो कहेंगे आप जमात कराएं, तो कहेंगे नहीं तुम जमात कराओ मैं पीछे खड़ा होऊंगा तुम्हारे। जब रैंक्स में, जब आमने सामने होंगे मुसलमानों के साथ दज्जाल की जब नज़र पड़ेगी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ तो वो खौफ के मारे भाग निकलेगा वहाँ से। क्योंकि उसको पता है कि मुझे एक ही मार सकता है और वो आ गया, वो भागेगा। रसूल सल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम उसको लुद के मकाम पे कत्ल करेंगे, लुद के मकाम पे कत्ल करेंगे। अब अगेन ये हदीसों की वही वाली बात कि मुराद क्या है इससे। तो आजकल इसराइल के अंदर एक शहर है जिसका नाम है लुद, LUD, और इसराइल का जो पूरे इसराइल के अंदर सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो उधर ही है, बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सवारी का क्या जिक्र था, उसकी जहाज़ उसकी सवारी होगा। तो वो जब फरार होगा, इसका मतलब यह है कि वो भागने की कोशिश कर रहा होगा, एयरपोर्ट के उधर ही कहीं वो मारा जाएगा, जिसके बारे में आप सुना है लुद के मुकाम पर मारा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब दज्जाल मारा जाएगा, तो जो जूश किंग था, जो वादा किया हुआ, जो जिसके ऊपर वो मुंतज़र थे, जब वो मारा गया, तो फिर तो यहूदी जो हैं वो बिखरेंगे, सारे ईसाई जितने भी लोग थे बाकी कौमें, दज्जाल के साथ तमाम कौमों ने, तमाम मजाहिब में जाके मिल लेना है। हज़रत उमर का एक कॉल है, और हज़रत उमर वो ज़ात हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ मुश्रिकीन के साथ भी लड़े थे, यहूदियों का भी मुकाबला किया था, हज़रत अबू बकर के दौर में मुनाफिकीन के साथ भी लड़े थे जब झूठे नबी पैदा हो गए थे, अपने दौर के अंदर अपनी खिलाफत के अंदर पर्शियन एम्पायर से भी लड़े थे, आतिश परस्त भी हैं जो, और जो रोमन्स थे उनके साथ भी लड़े थे। यानी कि एक बहुत यूनिवर्सल तरीके से हर मज़हब के साथ उनका टाकरा होया हुआ है। उनका एक कॉल है, और उनकी पूरी ज़िंदगी के ये जो नॉन मुस्लिम के साथ उनकी लड़ाई थी उसका निचोड़ है, वो क्या है, अलकुफ्र मिल्लत वाहिदा, कुफर जो है वो एक मिल्लत वाहिद है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो ये तमाम शेर जो हैं दज्जाल के पीछे जब लगे हुए थे, वो बिखरेंगे भागेंगे। तो हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर और दरख्त हैं, वो मुसलमानों को पुकार पुकार के कहेंगे मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आओ इसे कत्ल करो, अहले ईमान मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, एक एक यहूदी कत्ल किया जाएगा। पत्थर से मुराद ये ना समझें कि सिर्फ बड़े बड़े कोई पत्थर ही होंगे, ये बिल्डिंग्स किस चीज़ से बनी होती हैं, पत्थरों से ही बनी होती है ना, ये क्या होता है, ये जो सीमेंट ही होता है, ये पत्थरों को क्रश ही किया होता है ना, ये जो बजरी होती है, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो पत्थर पुकार पुकार के कहेंगे, दरख्त पुकार पुकार के कहेंगे कि आओ मुझे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, मेरे पीछे काफिर छुपा हुआ है, आओ कत्ल करो। सवाए अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूदियों का जो दरख्त होगा हरकत, वो ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप ज्यूइश नेशनल फॉरेस्ट जो है, जिसका हमारा भी महकमा जंगलात है ना, तो उनका जो है, उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखें, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने 240 मिलियन दरख्त जो हैं वो प्लांट किए हैं। एक क्रिश्चियन चैनल है गॉड TV, उन्होंने 100 मिलियन दरख्त जो हैं वो प्लांट किए हैं फॉर सेलिब्रेशन ऑफ जीसस सेकंड कमिंग। जो गुलायत बुक जो मैंने जिक्र किया था उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र है। रसूल सल्लम की तमाम बातें सच्ची हैं कि यहूदियत का खात्मा हो जाएगा। फिर वो जो हम तारीख पढ़ते आ रहे थे यहूदियों की, जो 4,000 साल लंबी तारीख जो थी उनकी, वो बिल आखिर इस तरह आके ख़त्म होगी। हज़रत ईसा के बारे में जिक्र आता है, वो सलीब को तोड़ देंगे, सलीब जो क्रॉस होता है क्रिश्चियंस का, उसको तोड़ देंगे। मुराद क्या है, जो क्रिश्चियंस जो होंगे, जो बिलीव करते हैं कि जीसस जो हैं वो हमारे सेवियर थे, वो आके क्या कहेंगे, वो असल दीन पेश करेंगे कि मैं तो तुम्हारे गुनाहों की वजह से सूली चढ़ा ही नहीं, और असल में तो मैं सूली चढ़ा ही नहीं। कुरान के अंदर क्या है, मा कतलूहू व मा सलबहू, ना तो कत्ल किए गए ना उनको सूली चढ़ाया गया। तो ये तुम्हारा कीदा ही गलत है, क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाएगी, खंजीर को कत्ल करेंगे। मुराद क्या है, जो चीज़ें हराम हलाल हो चुकी थी वो वापस उसके अंदर आएंगी। और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था, वो जो दो आयतें मैंने आपको कुरान की पढ़ के सुनाई थी, युरीदून लियुतफिम नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, कि ये चाहते ये हैं कि अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के जो नूर, अल्लाह ताला का चिराग है, उसको बुझा दें। उसकी अगली आयत दोनों दफ़ा क्या है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुश्रिकून। जो इनके प्लान्स हैं उनके अगेंस्ट क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह है जिसने अपने नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था दीन हक देकर, किताब देके, इस्लाम देके, ताकि पूरी दुनिया के ऊपर उसको गालिब करे, चाहे मुशरिकों को जितना मर्जी बुरा लगे, जिन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को सहारा बना लिया था, वो इसके अगेंस्ट जो मर्जी करना चाहे, अल्लाह ताला कह रहे हैं बिल आखिर यही होगा। और वो किसके ज़रिए होगा, वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए, इस्लाम जो है जिसके ख्वाब ये लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के, वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस्लाम जो है वो ग्लोबलाइज हो जाएगा। जहाद के लेक्चर्स के एंड के अंदर ये बात मैंने बताई थी तब। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया हुआ सूरह आले इमरान की आयत है, जब ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक था, उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, व मकरू व मकर अल्लाह, इन्होंने तो चाल चली लेकिन एक चाल थी जो अल्लाह ने चली, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बिल आखिर वो होगा जो अल्लाह ताला ने चाहा था, क्योंकि अल्लाह जो है वो तो बेस्ट प्लानर है, अल्लाह ताला की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा आगे जाएगी। तो वो जो तारीख थी यहूदियों की, वो अपने ट्वाइलाइट उनका ये होगा कि इस तरह वो अपने जब ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो देख रहे हैं, और थर्ड टेम्पल का, और जो ज्यूइश किंग का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो उसी के साथ ही फिर ख़त्म होंगे और दीन इस्लाम ही प्रवेल करेगा। जो हमें खबर करनी है वो अपनी खबर करनी है, जिस तरह रसूल सल्लम के पास एक सहाबी आए थे, उन्होंने आगे पूछा था अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, आप ने एक जवाब दिया था तुमने तैयारी क्या की है क़यामत के लिए, एक तो ना खबरें जाना ये होगा फिर ये होगा, तुमने क्या तैयारी की है उसके लिए। जिस तरह दज्जाल के ज़ाहिर होने के बाद किसी का ईमान लाना उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा, इसका मतलब क्या है, जो कुछ करना है अभी करना है, जो कुछ करना है अभी करना है। ये बातें बिल्कुल अधूरी हैं, तारीख बनी इसराइल की ख़त्म होती है यहाँ पे, लेकिन ये बातें कंप्लीट नहीं होती जब तक ये ना बताया जाए आप लोगों को कि फिर बिल आखिर हमने क्या करना है, या इन फितनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नेट के ऊपर तो मटीरियल आपको मिल जाएगा दज्जाल और इन चीज़ों से मुतल्लिक, लेकिन उसका हल क्या है तमाम मसाइल का, हमने किस तरह बचना है उनसे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा की किसी क्लास के अंदर उसके ऊपर अब मैं लाइट थ्रो करूँ। और क्वेश्चंस अगर आप लोगों के माइंड में कुछ भी हैं इन तमाम लेक्चर्स के दौरान, वो उसमें आके करना, या आप लोगों के ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि आप लोगों ने इस बात को आगे जाके बयान करना है। चाहे आप लोग ये लिंक फॉरवर्ड कर दें कि ये कोई लेक्चर है जो आप सुन लें, चाहे आप ख़ुद सुन के बयान कर दें, उसमें किसी का नाम शाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने कहाँ से सुना था या मुझे किसने बताया, वो आप अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं ले लें, उन चीज़ों की जिक्र नहीं है। बस ये काम ज़रूर करें कि इस बात को फैलाएं, ज़रूर ये तमाम बातें फैलाएं। इसका पेयर बनता है जहाज वाले लेक्चर्स, 6 लेक्चर्स, उनको ज़रूर गौर से सुने लेक्चर्स, जब तक बार बार आप नहीं सुनेंगे आपकी इसमें नहीं बैठने वाली बात। मैं आपको अपना मामूल ये बताता हूँ कि जिनको मैं बहुत शौक से सुना करता था, सबके सब फौत हो चुके हैं वो, उनके लेक्चर्स को, उनके ऑडियो या वीडियो लेक्चर्स को मैंने एक नहीं कई कई दफ़ा सुना हुआ है, तब जाके तमाम एस्पेक्ट तमाम बातें सेव हुई हैं माइंड के अंदर। वरना एक दफ़ा मैंने अभी आपको बात बताई, 100% जो मैंने आपको मवाद दिया है उसमें से आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 40-50% अभी कैरी करके लेके जाएंगे, और शाम तक वो मवाद भूलते जाएंगे आप लोग। और जैसा मैंने किसी पहले की क्लास में बताया था कि जब कोई नाफरमानी का काम होता है तो आपके अंदर से वो चीज़ें कम होती जाएंगी, एंड में जाके 10% बातें रह जाएंगी या 5% बातें रह जाएंगी। और ये भी हो जाएगा कि कोई बात मैंने कुछ और जुमला बोला था, आप गलत फहमी में कुछ और समझ के बयान करना शुरू कर देंगे उसे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैका।